इन आयात की जो तशरीह है, वजाहत जो है, आइए देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, तो क्या करो, फातू बिसूरतिम मिम मिस्ले, तो इस जैसी एक ही सूरत जो है वो बना लाओ। तो अब यहां से जो बात शुरू हो रही है, तो क्या है कि खालिस्तन जो कुरान मजीद की दावत दी गई, तो अहले मक्का ने उसका इनकार किया। और आप देखें कि पहली आयत जो हमने पढ़ी थी, कल जो पढ़ी थी, जिसमें आयत नंबर 21 और 22, 21 और 22, इसमें ना तौहीद की दावत थी, एक अल्लाह को मानो और फिर शिर्क ना करो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तअलमून। और यहां पर जो है अब क्या है, यानी तौहीद की जब अल्लाह ताला ने इन आयात में दावत दी ना, तो साथ ही उसके दलाइल दिए, और वो दलाइल क्या थे, इंसान का अपना जिस्म और कायनात से अल्लाह ताला ने दलाइल दिए थे कि जिस रब ने ये किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसकी इबादत से इनकार कर दो। तो हमारे अकायद में बुनियादी अकीदा क्या है, तो अकीदा तौहीद, दूसरा जो है वो अकीदा रिसालत है। तो यहां पर अकीदा रिसालत यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने उनको कुरान का मोजा अता किया, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की प्रॉफिटहुड के लिए, जो उन उसके सबूत के लिए, उसकी विटनेस के लिए जो चीज दी गई, वो क्या थी, कुरान मजीद था। और कुरान मजीद का अहले मक्का क्या करते थे, इनकार करते थे। अल्लाह ताला जब भी अंबिया को कोई चीज बतौरे मोजा देता है, तो वो चीज अता करता है जिसकी उस जमाने में धूम मची हो। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू की बड़ी धूम मची हुई थी, वो क्या करते थे, युअल्लिमून अस्सेहरा, वो जादू सीखा करते थे, बिबाबिल हारूत व मारूत, है ना। तो हमें बनी इसराइल में ये बात महसूस होती है कि वो ऐसा जादू सीखते थे जिससे मियां बीवी में आपस में वो फर्क पैदा कर दे। तो अब ईसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया, असा दिया, और वो क्या था कि वो बड़े बड़े जादूगरों को भी शिकस्त दे दे। और उस जमाने के बड़े बड़े जादूगर जो थे, जो फिरौन ने जिसको दुनिया भर से, मुल्क भर से इकट्ठा किया था, तो वो सारे क्या हुए, उनको ये समझ आ गई, उन्होंने ये कहा कि हम जो है कि बिरब्बे मूसा व हारून, उस पर हम ईमान ले आते हैं, और वो सजदे में गिर गए। तो बड़े बड़े जादूगर इस बात को समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो चीज है, जो असा है, वो जादू नहीं है। तो ऐसा मोजा अता किया जिसको जादू, जिसने जादूगरों को भी शिकस्त दे दी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना जो था, वो ऐसा जमाना था, बड़े बड़े हकीम जो थे उनको माना जाता था, हिकमत पे बड़े उरूज पर थी। और जैसे बुकरात है, अरस्तालीस है, लुकमान है, जालीनूस है, तो ऐसे हुक्मा, ऐसे जो हकीम थे, इनका बड़ी शोहरत थी, बड़ा डंका बजता था। अब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजे अता किए, वो क्या था कि उनको ये कहा था कि जो मर जाए उसको भी आप जिंदा कर देंगे, लेकिन ये जो हकीम थे कि जिन जैसे बुकरात है, अरस्तालीस है या लुकमान है, ये मरने वालों को जिंदा नहीं कर सकते थे। वैसे हिकमत थी इनकी बहुत मशहूर, लेकिन यहां आके इनकी हिकमत खत्म हो जाती थी जब कोई, जिस पर मौत आ जाती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजा अता किया कि वो हकीम जो थे, वो उनकी वो कर ही नहीं सकते थे वो काम, तो वो मान गए कि ये कोई और चीज है, ये कोई मोजा जो दूसरे को आजिज कर दे, इज्ज़ आजिज कर देना कि दूसरा लाजवाब हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजा अता किया गया, वो क्या था, कुरान मजीद। और कुरान मजीद जो है, उसको फसीह और बलीग अरबी जबान में अल्लाह ताला ने नाजिल किया। और उस जमाने में अरब में अरबी जबान, जो लुगतुल अरबी या अच्छी अरबी जबान की बड़ी शोहरत थी, इनके शोरा, इनके खतीब, इनके जो बड़े बड़े लोग थे, ये जमा होते थे, और इनके अदबा जो अदीब थे, ये शायरी करते थे, ये खुतबे देते थे। और इनके यहाँ ये भी था कि जो अच्छी शायरी होती थी ना, जिसको लोग मान जाते थे कि हाँ भाई ये बड़ी चीज है, तो उसको ला करना फिर खाना काबा में लटका देते थे। सबा मुअल्लकात, सबा सेवन को कहते हैं, मुअल्लकात अलग से है, हैंगिंग। तो उस जमाने के जो, यानी सारे शायरों में से जो सात मशहूर शायर थे, उनका कलाम उन्होंने लाकर खाना काबा में लटकाया हुआ था, सबा मुअल्लकात। तो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मोजे के तौर पर जो चीज दी, तो वो कुरान मजीद। اور قرآن مجید کو ایسی زبان میں دیا کہ عربی زبان میں، اور ایسی فصیح زبان، ایسی بلیغ زبان، اتنی اچھی زبان، ایسے حقائق، ایسے دلائل، ایسے مضامین اللہ تعالیٰ نے پیش کیے کہ جو واقعی غیب سے ہی ہو سکتے تھے، ایک انسان ایسا کام جو تھا وہ نہیں کر سکتا تھا. اور اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگاتے تھے کہ آپ کو کوئی آ کے نہ کوئی سکھا جاتا ہے، کوئی جیسے وہ کاہن، ساحر یا جن یا اس طرح کے لوگ، کوئی جیسے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ بہت سی باتیں کرتے تھے نا، تو کہتے تھے یہ کاہن ہے، کہانت کرتا ہے، ہاں یہ مجنو ہے، جنون، جو بھی باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو آ کے کوئی جو سکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ ایک انسانی کلام ہے کہ ایک انسان آ کے ایک انسان کو سکھا جاتا ہے، تو اے اہل مکہ تم ان کن تم فی رئی بن، اگر تمہیں کوئی شک ہے، اگر تمہیں کوئی کھٹکا ہے، اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدینا، اپنے بندے پر. عبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ کوئی خدا نہیں تھے، وہ کوئی نور نہیں تھے. کیونکہ آج مسلمانوں میں سے کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے. نور اللہ ہے، اللہ و نور السماوات والارض. کچھ لوگ آج اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ بات پیش کرتے ہیں کہ وہ میرے جتنے بھی رسول دنیا میں آئے وہ سارے میرے بندے تھے. وہ انسانوں کی طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، وہ بیوی بچے رکھتے تھے، وہ اپنی بشری حاجات اور ضروریات رکھتے تھے، اور انسانوں کی چونکہ وہ بہتری اور ترقی کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان ہی بنا کر بھیجا. اگر ان کو فرشتہ بنایا جاتا تو زمین پر فرشتے چل رہے ہوتے، یعنی فرشتوں میں فرشتے کو بھیجا جاتا، انسان تھے تو انسان کو بھیجا گیا. تو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے جو قرآن. اے لوگوں، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو کیا کرو؟ فاتو، اتو، آؤ، اور اگر با آ گیا تو کیا ہے؟ لے آؤ. فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت اور بنا لو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات جو ہے وہ کئی اور جگہ پر بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام پیش کیا ہے قرآن مجید، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے تو تم پھر ہمیں کر کے دکھاؤ. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کھول بھی سکتی ہیں. سورت ہود کی آیت نمبر 13، اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ فرماتے ہیں. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے؟ کل فاتو، کہو کہ پس لے آؤ، بعشر سوار مثلہ، کہ اس جیسی 10 صورتیں اور لے آؤ. ٹھیک ہے، تو مفتریات گھڑی ہوئی، ودعو، اور بلا لو، من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اپنے اور جو ساتھی ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تمہارے اندر جو ہے کچھ بھی طاقت ہے، اگر تمہارے اندر جو ہے وہ کچھ بھی ہمت ہے، تو اپنے اور ساتھیوں کو بلا لو. پورا قرآن نہیں تمہیں کہہ رہے، بس صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 صورتیں جو ہے نا تم اور لے آؤ، اور دیکھنا یہ لوگ جو ہے نا یہ کام ایسے نہیں کر سکیں گے. پھر سورت یونس جو ہے اس کی آیت 38 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے؟ قل فاتو بسور، تو سورت یونس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سورت یونس کی آیت نمبر 38 میں، 38 میں بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر تم کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ کہ اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور بلا لو جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم اپنی اس بات میں جو ہے وہ سچے ہو. پھر سورت بنی اسرائیل کی آیت 88 میں بھی یہی بات کہی ہے. سورت بنی اسرائیل آیت 88، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ انکار کرتے تھے، تو وقتاً فقتاً بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو مختلف انداز میں جو ہے پیش کیا. وہاں پہ بھی یہ بات کہی، لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، علی ان یاتو، کہ وہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن، کہ اس جیسا قرآن وہ لے آئیں، لا یاتون بمثل، تو اس جیسا لا نہیں سکتے، ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کرنے والے جو ہیں وہ کیوں نہ بن جائیں. اسی طرح سورت طور کی آیت 33 اور 34 میں بھی یہی مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے. تو آپ دیکھیں कि पहले कहीं अल्लाह ताला ने कहा कि पूरा कुरान ले आओ, तो पूरा कुरान नहीं ला सके। फिर कहा कि अच्छा 10 सूरतें ही ले आओ, तो 10 सूरतें नहीं ला सके। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो क्या है कि एक ही सूरत ले आओ, है ना। क्या अल्लाह ताला ने कहा कि फातू बे सूरत, ता जो आ रही है ये बता रही है एक सूरत की बात हो रही है कि एक सूरत ले आओ इस जैसी, और ये अगर अकेले नहीं ला सकते तो क्या करो, वदउ शुहदा अकुम, अपने जो साथ लोग हैं उनको भी बुला लो। तो असल में शुहदा शहीद यानी एक तो होता है, जैसे एक गवाह भी वही होता है जो आपके पास आता है और आपकी मदद करता है ना। तो अब दूसरी बात क्या है कि इससे मुराद ये है कि तुम जो है वो जिस जिससे भी मदद ले सकते हो, जो भी तुम्हारे साथी हैं, हमायती हैं, नुमाइंदे हैं, तर्जुमान है, उनको जमा कर लो, मिन दून इल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा, इन कुन तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। तो यहाँ पर भी अहले मक्का को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम कुरान जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकते, और तुम कुरान का जो है मुकाबले में कोई चीज बनाकर नहीं ला सकते, क्योंकि वो ऐसी बातें जो थे वो करते रहते थे। तो अब आप देख लें कि ये एक हकीकत है कि कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है ये बहुत बड़ा जो है वो मौजजा है, और इसके बारे में यानी खुद जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी इस बात को जो है ना वो तस्लीम करते हैं। बहुत सी इसकी रिसर्च है जो हम मेरे और आपके सामने आती है वक्तन फक्तन। इसमें आप यही सबसे बड़ी बात आप यही देखें कि ये मौजजा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और जब कहा गया कि इकरा, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने कहा इकरा, उन्होंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। प्यारे रसूल सल्लम ने फिर कहा कि इकरा, और फिर अपने रब के नाम से बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उन्होंने जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वाकई कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक रसूल हैं जिन पर नाजिल हुआ। तो इसमें इसका एक अहम मौजजा क्या है कि ऐसा ये कलाम है कि अहले मक्का इसकी जबान से इतने मुतासिर होते थे, कहते थे कि हम ऐसा इसका नमूना नहीं पेश कर सकते। कहते हैं जब सूरत जो थी वो कौसर नाजिल हुई ना, तो हजरत अली रजी अल्लाह ने जाकर ना इसको खाना काबा में लटका दिया। 3 आयतों पर मुश्तमिल छोटी सी सूरत, और वो क्या था कि तेरा दुश्मन ही जो है ना वो दुम कटा है। तो कहते हैं कि वहां पे जब किसी ने उसको देखा कि एक ऐसे आदमी ने देखा जो बद्दू था, तो वो सजदे में गिर गया, कहने लगा कि मैं जो है ना, हम इस बात को मानते हैं कि वाकई ये सहरे मुबीन है। और किसी ने कहते हैं सूरत कौसर के नीचे लिख दिया कि मा हाजा कौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता सूरत कौसर के बारे में। इसी तरह से यानी कुरान के दलाइल इतने सादा हैं, इतने आसान हैं कि आम लोग भी इसको समझ लेते हैं। कि कहते हैं कि एक बद्दू जा रहा था और उसने ये आयत कहीं पढ़ी कि फसदा बिमा तो मर, कि जिस वो आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। प्यारे रसूल सल्लम को अल्लाह ताला कहते हैं कि बद्दू इतना लुत्फ अंदोज हुआ इस आयत से कि वो सजदे में गिर गया और कहने लगा कि मैं इसकी फसाहत को सजदा करता हूँ, मैं इस कलाम की फसाहत को सजदा करता हूँ। अरबों का एक शायर था वलीद, बहुत बड़ा शायर था और बड़ी शायरी करता था, बड़ा लोग उसको मानते थे। एक ऐसा उसने एक दफा शेर कहा था कि जितने उस वक्त महफिल में लोग थे सब सजदे में पड़ गए थे। तो जब कुरान नाजिल हुआ तो उसने ना शेर कहने छोड़ दिए, तो लोगों ने कहा कि तुम शेर क्यों नहीं कहते। कहने लगा अफा बिहाजल कुरान, अफा बादा बिहाजल कुरान, अब इस कुरान के नाजिल होने के बाद भी मैं शेर कहूं, यानी अब तो शायरी का लुत्फ भी खत्म हो गया, अब तो कुरान का लुत्फ जो है ना वो आता है। फिर इसी तरह से यानी कुरान मजीद के जितने भी अहकाम हैं सब काबिले अमल हैं, इनफरादी लिहाज से देख लें या इज्तमाही लिहाज से देख लें, इबादात को देख लें, मुआशरत को देख लें, सियासत को देख लें, कुछ भी है यानी काबिले अमल है। ऐसी चीज नहीं है जो नाकाबले अमल हो। इंसान जो कानून बनाता है ना वो नाकाबले अमल है। कभी हम कहते हैं कि सोशलिज्म चाहिए, कम्युनिज्म चाहिए, फिर थोड़े ही अरसे में वो खत्म हो जाता है। जैसे रशिया में जब सोशलिज्म जो था वो शुरू हुआ था, तो 1917 में, अप्रैल 1917 में ये शुरू हुआ, और तकरीबन 75 ईयर ऑलमोस्ट इतना ये रहा। लेकिन आप देखें कि कहते हैं कि एक दिन भी जो है उनकी जो था ना कानून जो था उनके पैलेस में चल नहीं सका। उनकी जो हुकूमत थी ना, जो कैपिटल था, वो सोशलिज्म कम्युनिज्म के मुताबिक चल ही नहीं सकी। और थोड़े ही अरसे में आप देखें कि फिर 80 की दहाई जो है, सन 80 में, 1980 से सोशलिज्म कम्युनिज्म को जवाल आना शुरू हो गया। खुद ही उन्हीं की स्टेट ने उनसे जो है वो बगावत करनी शुरू कर दी। कि उसमें उसकी क्या वजह थी कि सोशलिज्म कम्युनिज्म जो था वो कामयाब नहीं हुआ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि इंफरादी मफादात खत्म कर दिए गए और इज्तमाई मफादात जो थे यानी कि मेजोरिटी इकट्ठे मिलकर करेंगे, यानी मिलकर ही है खाना भी और पीना भी और घर भी और सब चीजें, तो इंडिविजुअल चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। इस्लाम जो है इंफरादी तौर पर भी राइट्स देता है और इज्तमाही तौर पर भी देता है। अगर लोग इस पर इसके इस्लाम के ऊपर जो है वो अमल करते हैं तो फिर क्या है कि वो बुलंद मकाम पर पहुंच सकते हैं। और नामुमकिन नहीं है कि अगर हम इस्लाम की जैसे निजामे जकात को ही आप ले लें, अमीर अमीर तर नहीं होता, गरीब गरीब तर नहीं होता। अमीर की दौलत गर्दिश में रहती है अगर वो जकात और सदकात करता रहे, और अगर सारे अमीर लोग जो हैं वो जकात देंगे तो गरीब गरीब नहीं रहेगा, है ना। तो इसी तरह कुरान मजीद का एक और बड़ा मौजा ये है कि वो अपने मौजू से नहीं हटता, टॉपिक से नहीं हटता। उसका टॉपिक इंसान है कि इंसान को हदायत मिल जाए, इंसान की दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। कोई आयत निकाल के देख लें, कोई सफा निकाल के देख लें, कोई सूरत खोल के देख लें, आपको हर जगह जो है ये बात पता चलेगी कि हदायत का कोई इसमें लेसन है जो दिया जा रहा है। फिर इसी तरह कुरान का एक मौजा ये है कि वो जो है वो जुजवियात में नहीं जाता, गैर जरूरी बातों में नहीं जाता। वो टॉपिक में जब रहता है ना तो ऐसी तफसील में नहीं जाता जिसका हदायत से कोई ताल्लुक ना हो। मसलन आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर वही का जिक्र तो किया अल्लाह ताला ने, लेकिन उनका माँ का नाम नहीं लिया कि वो कौन थी, है ना। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि जन्नत में दरख्त को खाना नहीं है, ला तकरबा ला तकरबा हाजही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। दरख्त का नाम नहीं बताया कि क्या था। हम क्या हम आज मुसलमान इसी बहस में पड़े हैं, उस दरख्त का नाम पता नहीं क्या था। असहाबे कहफ का जिक्र मिलता है तो वहां पे ये जिक्र नहीं कि वो कितने थे, लेकिन मुसलमान लेसन लेने की बजाय क्या करते हैं पता नहीं, वो 3 थे कि 13 थे, पता नहीं कुत्ता कितने नंबर का था। तो हम टॉपिक से हटकर गैर जरूरी बातों में चले जाते हैं, है ना। वो कहते हैं ना किसी मस्जिद में दो लोग, एक बुजुर्ग खड़े थे और दो लोग वुजू कर रहे थे, और जो वुजू कर रहे थे वो ये कह रहे थे ये हौज कितना बड़ा है, इसकी मेजरमेंट, यानी वुजू करते हुए वो इस टॉपिक पर थे कि ये कितना बड़ा है जिससे, और वो जो बुजुर्ग थे वो ये यानी उन्होंने उनको हिलाया कि इसकी मेजरमेंट छोड़ो, पहले जाके ना वुजू करके नमाज तो पढ़ो ना, आपको वुजू में फोकस करना है कि मैं किस लिए वुजू कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ये है कि गैर जरूरी जो चीजें हैं उनसे जो है वो हटा जाए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि गाय जिबा करो, ये नहीं कहा था कि वो जवान करनी है, वो सफेद रंग की करनी है, वो चमकदार करनी है, वो सफरा पीली करनी है। बजाय इसके कि वो गाय जिबा करते हैं वो पूछते ही रहे कि मा लौनुहा, है ना, उसका रंग कैसा हो, ये पूछते ही रहे। वो खेत हल चलाती हो कि नहीं, वो पानी देती हो कि नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो गाय जिबा कर देते ना तो कोई भी कर देते, वमा कादू या फलून, वो करने वाले ही नहीं थे, और अगर वो कर देते तो मैं कोई भी कबूल कर लेता। लेकिन वो जितने सवाल करते गए ना अल्लाह ताला ने भी फिर उनसे वो मांगी जिसकी वो इबादत करते थे। तो ये है कि ये कुरान का मौजजा है कि गैर जरूरी बातें नहीं करता, तो फिर हमें भी इस पर जो है वो अमल करना चाहिए। फिर इसी तरह से यानी कुरान मजीद का एक अहम मौजजा क्या है कि वो कभी भी अंबिया के ऊपर ना हमला नहीं करता, अंबिया को बतौर इंसान पेश करता है और ये बताता है कि अंबिया से भी जैसे कमी बेशी या गलती हुई है। और जब अंबिया जो है वो उन्होंने अपनी गलती का इकरार किया तो कुरान उनको बहुत अच्छे लफ्जों में याद करता है। अब सिद्दीक थे, वो शफीक थे, वो मुनीब थे, वो अवाहुन थे, वो वली थे, वो अल्लाह के दोस्त थे। अब देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या गलती हुई कि बाप मुशरिक था, उसके लिए दुआ नहीं करती करनी थी लेकिन कर ली, है ना। तो फिर गलती होगी तो अल्लाह ने, जब उन्होंने माफी मांगी फस्तक फरा, तो अल्लाह ने उनकी गलती माफ कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त के पास नहीं जाना था, इंसान होने के नाते चले गए, रब्बाना जलम ना पड़ा, अल्लाह ने खुद ही सिखाया तो उनको माफी मिल गई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ना नहीं था लेकिन छोड़ दिया। जब पैगंबर हिजरत नहीं करता जब तक के उस जगह से उसको हटाया ना जाए, है ना। तो वो वक्त से पहले चले गए थे तो अल्लाह ताला ने भी फिर उनको मछली के पेट में जो है वो सारी कहानी आप बाद में पढ़ेंगे। तो बहरहाल मुख्तसर बात क्या है कि कुरान जो है वो अंबिया को पेश करता है बतौर इंसान के, और ये नहीं कहता कि वो यानी उनके किरदार पर कोई किरदार कशी नहीं करता उनकी। خراب طور پر پیش نہیں کرتا، جبکہ باقی کتابوں میں یہ لوگ اب انہوں نے اتنی تبدیل کر لی ہیں کہ اس کو پیش کرتے ہیں غلط طریقے سے انبیاء کو، تورات انجیل وغیرہ. اور پھر یہ کیا رہتی دنیا تک ہے، پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں وقتی تھیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اب میں اور آپ قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کو بطور معجزہ کے کتنا اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں جو کافر ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ بھی معجزہ ہے کہ آج تک قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے اتنے 100 سال گزرنے کے بعد. کہتے ہیں کہ میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے جمع کر کے، خرید کر، فوٹو کاپی کر کے، جس طرح بھی ممکن ہو وہ لیے جائیں، اور پھر جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 جنریشن 3 نسلوں تک جاری رہا. اور کہتے ہیں کہ 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں وہ خود موجود تھا. تو اس ادارے کا تیسرا ڈائریکٹر جو تھا پروفیسر پریکٹیکل پیرس میں آیا تاکہ پیرس کی یونیورسٹی میں قرآن مجید کے جو نسخے موجود ہیں ان کے فوٹو کاپی حاصل کرے. تو اس پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ اس وقت میرے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کے فوٹو کاپی موجود ہیں اور آپس میں ان کا جو ہے وہ مقابلہ جاری ہے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی رپورٹ کے الفاظ کیا تھے کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے کیا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن جو بھی نتیجہ اب تک نکلا تو وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت کوئی نہیں ہے. نا کہیں زیر زبر کی کوئی فرق پڑ گیا الگ بات ہے، لیکن ویسے پورا کا پورا جو ہے وہ اصلی شکل میں جو ہے وہ موجود ہے. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ غیر مسلم بھی اس بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے. مولانا شاہ جو غیر مسلم مانتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں، اور آپ نے بھی مختلف کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مریم جمیلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مریم جمیلہ نے. یہ کرسچین تھی ہاں، اور یہ پھر مسلمان ہوئی. کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو نوکر تھا نا وہ مسلمان تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ صبح اٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا قرآن کی. اور مجھے، میں نا چھپ چھپا کے اپنی مدر سے نا میں سائڈ پہ جا کے اس کی تلاوت سنتی تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن میری والدہ جو تھی نا مجھے اس طرف نہیں جانے دیتی تھی. تو جب بھی مجھے موقع ملتا ادھر ادھر ہو کر، کیونکہ جب بھی میں دیکھتی کہ وہ بابا کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے نا، جو بھی اس کا ڈیوٹی ہوتی تھی، اس کے بعد نا وہ ایک بک لے کے پڑھتا تھا. جب وہ پڑھتا تھا تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی. تو پھر جو ہے وہ بہرحال وہ نماز بھی وہ پڑھتا تھا، کہتی پر مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا وہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا، جن کو سمجھ نہیں شاید کوئی ایکسرسائز یہ جو کی جا رہی ہے. پھر کبھی ان کو جب موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تو کہنے لگی، ایک دفعہ ایسے ہی میں کرسچینٹی اور اس کی سب چیزوں سے بہت پریشان تھی جو اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، کہتی ہے میں ایک ایسی دکان پر گئی ردی کی دکان پر جس سے کتابیں لوں، تو وہاں یہ قرآن مجید پڑا ہوا تھا. تو میں اس کو اٹھا لائی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یہ وہی چیز ہے جو میرا بابا یا نوکر جو تھا وہ پڑھا کرتا تھا نا. اور پھر کہنے لگی کہ اس طرح میں نے اس کو پھر، یعنی اس ردی، یعنی ہمارے مسلمانوں نے اس کو ردی کی دکان پہ دے دیا ہوا تھا. کیونکہ ہم لوگ جب ہمیں سمجھ نہیں ہے، جب ہم پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے نہیں ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو گھر کی صفائی کریں، یہ کتابیں سب نکال دیں، تو قرآن بھی کسی نے نکال دیا ہوا تھا. تو کہنے لگی پھر اسی طرح میں قرآن پڑھ کر جو ہے مسلمان ہوئی. اسی طرح یعنی پروفیسر کالائل کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن میں خلوص اور سچائی ہر لحاظ سے موجود ہے، اور یہ بالکل سچی حقیقت ہے. اگر کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ سچائی کی، تو قرآن سے ہو سکتی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے نا کہ وہ سچا ہو جائے. پھر اسی طرح سے یعنی خود جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی لکھنے والا اخبار الوطن ایجپٹ میں، ایجپٹ میں ایک عیسائی کہتا ہے کہ مسلمان جب قرآن و حدیث پر غور و فکر کریں گے تو اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کا علاج اس میں تلاش کر لیں گے، اگر یہ کریں گے تو. پھر اسی طرح سے ڈاکٹر رابندر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اخلاقی ہدایتوں اور دنائی کی باتوں سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن نے عالم انسانیت کی زبردست اصلاح کی ہے. تو جو لوگ بھی اس کے مضامین پر غور کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل قانون ہدایت ہے. انسانی زندگی کی کوئی بھی شاخ لے لیں تو ایسی نہیں کہ جو یہ کتاب اس میں جو ہے وہ مدد نہ کر سکتی ہو. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ مولانا شاہ محمد یعقوب بھوپال کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور مجھے جالنا کے ایک بزرگ کی بات بہت پسند آئی. उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या पढ़ा है तुमने। मैंने बड़ी इंकसारी से जवाब दिया कि मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, उलूम दीनिया ज्यादा चीजें तो नहीं पढ़ी, बस कुरान को थोड़ा सा याद कर लिया है। तो उन्होंने फरमाया अपने लफ्जों को तब्दील करो, तुमने सब उलूम पढ़ लिए, जब कुरान शरीफ पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, सब उलूम इसी से तो निकले हैं। अगले कुरान पढ़ लिया, तुमने सब पढ़ लिया। हम कहते हैं हमने सब कुछ पढ़ लिया, बस सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा। तो जिसने कुरान नहीं पढ़ा तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो असल बात क्या है कि मुझे और आपको ये जिंदा मौजा, ये एक जिंदा जो अल्लाह ताला ने नेमत मेरे और आपके लिए दुनिया में भेजी है, तो मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप इसको पढ़ना शुरू करें, इससे अपनी जिंदगियों को बदलना शुरू करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने काफरों को भी जमाने में चैलेंज किया था, और आज ये चैलेंज जो है वो मेरे और आपके लिए भी है। यानी उनको तो ये कहा था ना कि तुम ऐसी सूरत बना लो, क्यों कहा था? क्योंकि वो मानते नहीं थे। जब इनकार करते थे तो फिर अमल करना तो दूर की बात। आज मुसलमान क्या करते हैं कि कुफर बिल अमल करते हैं, मानते तो हैं लेकिन अपनी जिंदगी की मसले मसाइल, अपनी जिंदगी के अंधेरों को इस कुरान से जो है ना वो उससे रोशन नहीं करते, अंधेरों को दूर नहीं करते। हम कुरान मजीद कभी कभार, कभी कोई मुश्किल आ जाए, कभी नया घर बना लें, कभी कोई मसला हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो हम कहते हैं कुरान खोलना चाहिए। ये तुम्हारी अपने जर्फ की बात है कि तुम उससे समंदर के चंद कतरे मांगते हो। अगर तुम इससे समंदर मांगोगे तो कुरान पूरा का पूरा जो है तुम्हें, यानी अल्लाह जो है इसे हदायत का समंदर बख्शने को जो है वो तैयार हो जाएगा। कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रते किरदार। आज पूरी दुनिया में जो हमारे मसाइल हैं, इसकी सबसे बड़ा मसला क्या है उम्मत मुस्लिमा का, कि उम्मत मुस्लिमा जो जलील है, जो ख्वार है, कोई उनकी आवाज नहीं है। इतने मुसलमान हैं कि इतनी तादाद में अगर पत्थर जमा हो तो पहाड़ बन जाए, इतनी तादाद में रेत के जर्रे जमा हो तो सहरा बन जाए, इनके जमा हो तो जंगल बन जाए, घोंसले बन जाए। इतनी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं। उनके खून से ज्यादा सस्ता और खून नहीं है, पानी भी महंगा है, लेकिन मुसलमान गाजर और मूली की तरह जो है ना वो कट रहे हैं। 52 से ज्यादा मुस्लिम स्टेट्स हैं लेकिन कोई भी एक ऐसी नहीं जिसने बाकायदा इस्लाम जो है, कुरान मजीद जो है वो बाकायदा कानून के तौर पर जो है वो नाफिज हो। नारा है, नाम है, इस्लाम के नाम पर जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान भी लिया गया, लेकिन कोर्ट के फैसले जो है आज भी अंग्रेजों के कानून के मुताबिक जो है वो किए जाते हैं। इस्लामी निसाब नहीं है हमारा, कोई हमें ऐसा स्कूल नहीं मिलता जिसमें कुरान मजीद शुरू क्लास से लगा दिया जाए, और जब तक आप आखिरी क्लास में पहुंचे ना तो आप कुरान मजीद को पूरे पढ़कर फारिग हो जाए, ताकि आप इसको अपनी जिंदगियों में ढाल लें। तो यही है मेरा और आपका जवाल, और यही है मेरी और आपकी शिकस्त के असबाब, और यही है मेरे और आपके मूली और गाजर की तरह कटने की वजूहात। और जरूरत है कि अभी मुसलमान अपनी आंखों को खोले, अपनी नींद से बेदार हो, गफलत के मतवाले गफलत को छोड़ें, और कुरान मजीद जो है ना उससे दोस्ती कर लें, उससे मोहब्बत कर लें, उससे इश्क कर लें। और कुरान मजीद सिर्फ बच्चों को नाजरा नहीं पढ़ाना, तर्जुमे से भी पढ़ाना है, और तर्जुमे के साथ साथ फिर अमल। और उसके लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिकल और जो जो करना है वो मुझे और आपको करना है, क्योंकि बच्चे माँ बाप को जैसे देखते हैं ना। अगर मैं और आप घर में ऊंची आवाज में डेली कुरान की तिलावत करेंगे, हो नहीं सकता मेरे और आपके बच्चों की तिलावत अच्छी ना हो जाए। वो अगर मरियम जमीला जो थी वो क्रिश्चियन थी, एक नौकर जो ईसाई मुसलमान था, बाबा बहुत अच्छी तिलावत करता था, तो उसकी तिलावत को सुनकर अगर वो मुसलमान हो सकती है, यानी उससे कहती है कि ये वही चीज है जो कि वो मेरा बाबा किया करता था और मुसलमान हो गए, मैं और आप करेंगे तो मेरे बच्चों को भी, आपके बच्चों को भी कुरान आएगा। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि बहुत से घरों में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, उनको कुरान नहीं आता, बाज मर्दों को नहीं आता, बाज औरतों को नहीं आता, बाज बच्चों को नहीं आता ना। तो इसके लिए हमारी जो बर्फ, हमारे दिल बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं ना, इनको, इन बर्फ की ठंडक को शमा की रोशनी में तब्दील करें, और कुछ फैसला करें। चिराग इतने जलाओ के तीरगी ना रहे, बहुत दिनों से निजामे हयात बरहम है, चिराग इतने जलाओ के तीरगी ना रहे। मांगते फिरते हैं अगयार से मट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। मांगते फिरते हैं अगयार से मट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। तो खुर्शीद क्या है? कुरान है। कुरान को कवर्ड करके रख दिया और दूसरों से मांगते हैं बताओ कि कैसे हमारी इकोनॉमिक्स चल सकती है, कैसे हमारी सोशल लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि इन कुंतुम सादिकीन, ए काफरो, ए मुशरिको, ए इनकारियो, अगर तुम सच्चे हो तो फिर जरा कुरान की एक ही सूरत बनाकर ला दो। तो वो ना बना सके, ना कभी काफिर बना सकते हैं। तो हमने मान भी लिया, اگر ہم نے اپنے عملوں میں نہ اتارا تو پھر میں اور آپ سب اس کے لیے جواب دے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہیں کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے, تو یہاں پہ کیا ہے حرف شرط کہ تم ایسا نہیں کر سکتے, نہ کیا نہ کر سکو گے, تو کیا کرو, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو بچو اس آگ سے, اللہ تی جو, نار لفظ مؤنث ہے, اللہ تی جو اس کے لیے ضمیر آئی ہے وہ بھی مؤنث ہے, اور جہنم کے نام بھی سارے مؤنث ہیں. تو یہ سارا اس تھوڑا تھوڑا بیچ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ وہ ورب ضمائر پھر اس کے مؤنث آتے ہیں تاکہ آپ کو پھر یاد ہو جائے. تو بچو اس آگ سے, وقودہا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر, عدت للکافرین, جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو یہاں پر بھی کیا بات بتائی گئی ہے کہ جب تم اللہ نے جو چیلنج دیا اس کو پورا نہ کر سکے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے, اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے, پھر تمہیں ایمان لانا چاہیے, تمہیں پھر جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے. اور لوگوں, جہنم تو بڑی سخت چیز ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خاص طور پر اس کی آگ کا ذکر کیا ہے, آگ کہ بچو اس سے, آگ وہ جو جلے گی انسانوں سے, کہ انسان جب اس میں شرک والے, منافقت والے, کفر والے انسان جب اس میں ڈالے جائیں گے تو آگ اور بھڑکے گی. وقود, میں نے بتایا تھا نا, وقود وہ ایندھن ہے کہ جب وہ ایندھن جب جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس میں شعلے نکلتے ہیں, فلیم آتے ہیں, تو اتنے زیادہ اس کے جو ہیں وہ شعلے ہوں گے. جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہوگا, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے, 69 درجے زیادہ گرم ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہاں پہ نار ہے نا, کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نار الکبرا, بہت بڑی آگ ہے. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا نار الکبرا. پھر آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الحمزہ میں کیا کہتے ہیں, نار اللہ الموقدہ, اللہ کی جلائی ہوئی آگ. تو موقدہ جو ہے اس کا بھی روٹ کیا ہے, وقدہ, جلانا. پھر سورۃ الحمزہ کے بعد آپ دیکھیں تو سورۃ لیل آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نارن تلظو, کہ آگ کی لپٹ. اور سورۃ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 4 میں نارن حامیہ, کہ دہکتی ہوئی آگ, بھڑکتی ہوئی آگ. اب آپ دیکھیں کہ آگ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے نا, کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دنیا میں بھی ہم گرم استری, گرم دیچ کا, گرم تنور, گرم پریشر کوکر, ایسی چیزوں کے قریب نہیں جاتے, گرم اوون اس سے بچتے ہیں. تو اسی طرح سے یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اپنی بدعملیوں کو اپنے سے ہٹانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت شکل دکھائی گئی, ایک انسان دکھایا گیا جو آگ جلا رہا تھا. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, وہی کی شکل ہوتا ہے. اور وہ ایک شکل انسان آگ جلا رہا تھا اور آگ کے گرد دوڑ دوڑ کر اس کو بھڑکا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہ مالک خازن جہنم, اس کا نام مالک ہے, یہ جہنم کا دروغہ ہے, بخاری کی حدیث ہے. تو بھاگ بھاگ کے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کو بھڑکا رہا تھا, یعنی شکل بھی بڑی خوفناک اور بدصورت تھی, مکروہ تھی, تو بخاری کی حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کیا بتایا, انہ مالک خازن جہنم, کہ یہ جہنم کا دروغہ ہے جس کا نام مالک ہے. تو جہنم کی آگ سے انبیاء بہت ڈرتے تھے, اور وہ لمبی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نا, کہ جب وہ حشر کا میدان ہوگا تو انبیاء کیا کہیں گے, رب سلم رب سلم, کہ اے میرے رب مجھے بچا لے, اے میرے رب مجھے بچا لے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے بہت روتی تھی, ہے نا. اسی طرح سے اشرا مبشرہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جب تلاوت کر رہے تھے تو آگ کے عذاب پر آئے, اتنا روئے کہ گر کر بے ہوش ہوئے کہ اللہ تیرا عذاب اتنا سخت ہوگا. حضرت معاذ بن جبل, حضرت عبداللہ بن رواح, حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہم, یہ سب جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں آگ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی تھی. ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے گھر میں آگ لگ گئی تو नमाज पढ़ रहे थे, हमसायों ने आके शोर करना शुरू किया कि आग लग गई, आग लगी, धुआं निकल रहा था, आग जल रही थी। तो फिर वो अपनी नमाज जब पूरी मुकम्मल कर ली तो फिर फारे हुए, तो लोगों ने कहा कि हमें बड़ी हैरत है कि घर में आग लगी हुई थी, इतना धुआं था, और आप जो थे आप इतने बेपरवाह और बेनियाज होके नमाज पढ़ रहे थे। कहा कि जहन्नुम की आग ने मुझे इस आग से बेनियाज कर दिया, यानी मुझे तो जहन्नुम की आग की फिक्र हो रही थी तो मैं नमाज ऐसे पढ़ रहा था। कहते हैं कि हजरत अता सलीमी रहमतुल्लाह अलैह ने के हमसाये ने रोटियां लगाने के लिए तंदूर जलाया, और हजरत अता सलीमी रहमतुल्लाह अलैह जब उस तंदूर को जलते हुए देखने लगे ना, तो देखकर रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए, यानी उनको जहन्नुम उसको देखकर याद आने लगी। हजरत रबी, आपने इनका नाम सुना होगा, रहमतुल्लाह, सारी सारी रात कहते बिस्तर पर पहलू पलटते रहते। बीवी ने एक दफा, बेटी ने पूछा, अब्बा जान सारी दुनिया आराम से सोती है, आप क्यों जागते रहते हैं? फरमाने लगे, बेटा जहन्नुम की आग तेरे बेटे तेरे बाप को सोने नहीं देती। बेटी ने पूछा कि पहलू क्यों बदलते हैं, कि कोई खाना, कोई पानी, कोई बिस्तर ठीक नहीं? तो कहा कि नहीं बेटा, जहन्नुम की आग तेरे बाप को सोने नहीं देती। तो असल बात क्या है, इन अजाब रब्बिका कान महजूरा, के बेशक जो रब का अजाब है ना, वो वाकई डरने के लायक चीज है। सूरत बनी इसराइल में है। तो यहाँ पर भी यही बात हमारे सामने आई कि लोगो फत्तकुन्नारल्लती, कि उस आग से बचो, उस आग से डरो, वकूदुहन्नास वल्हिजारा, जिसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। इंसान कौन से? जो शिर्क करते थे, जो थे वो क्या करते थे, एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते थे। तो हिजारा पत्थर क्यों होंगे? पत्थर जले तो उसको क्या पता चलेगा? कहते हैं कि ये वो पत्थर होंगे जो कि इंसान जिनको पूजता था दुनिया में, तो इसलिए उनको आग में डाला जाएगा ताकि लोग ये देख लें कि उनके जो माबूद हैं उनका क्या अंजाम हुआ, उनको और तकलीफ हो, कि ये कोई फायदा नहीं दे सकते थे, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, तो क्यों उनको पूजा ऐसी चीजों को? और ये जहन्नुम, ये आग किसके लिए तैयार की गई है? उद्दत लिल काफिरीन, ये कुफर करने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाहुमा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुमा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुमा अजिरना मिनन नार। रब्बना ला तजअलना, अल्लाह तू हमें ना बनाना इन लोगों में, मिनहुम, यानी रब्बना ला तजअलना मिनहुम। फिर आगे अल्लाह ताला एक तरफ जहन्नुम का, उसकी आग का जिक्र करके साथ ही खुशखबरी भी देते हैं। कहा वबशिरिल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहाती, कि आप खुशखबरी दे दीजिए ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये एक अच्छी सी खबर सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और अमले सहले किए। ईमान की मिसाल एक सीड की तरह है, एक बीज की तरह है, और वो बीज जो फल और फूल ना दे, जिससे पत्ते ना निकले, वो बीज नकारा होता है, उसको जाया कर दिया जाता है। तो हमारे ईमान के बीज से अमले सवाले के फल और फूल ना निकले, है ना, अच्छे अमल हम गुड डीड ना करें, तो फिर ईमान ईमान नहीं है। जैसे हम कहते हैं हम ईमान तो लाए लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते, या लोग जकात नहीं देते, या ये कि हम बदअमलियां करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो बीज है जो खराब है, जो सड़ा हुआ है, जो बदबूदार है, उससे कभी भी अच्छा फल और फूल जो है वो नहीं आ सकता। तो कहा खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और अमले सवाले किए। और अमले सवाले जो हैं, यानी अच्छे अमल करना, और अच्छे अमल कौन लोग करते हैं? ये खुशकिस्मत लोग करते हैं, जो फिक्र करते हैं कि जब ईमान ले आए हैं तो इसके साथ साथ क्या करना है, कि अमले सवाले भी करने हैं, क्योंकि बगैर अमले सवाले के इंसान को फिर कुछ मिलेगा नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अन्ना लहुम जन्नत, के उनके लिए जन्नतें हैं, उनके लिए बागात हैं, और बागात भी कैसे, तजरी मिन तहती हल अनहार, तो उनके नीचे नहरें बहती होंगी। आप देखें कि कुरान मजीद जो है वो जन्नत को मुख्तलिफ नामों से याद करता है। कभी अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत जो है ये दारुस्सलाम है, वल्लाहु यदु इला दारिस्सलाम, कि लोगों अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है, वहां पीस ही पीस है। कभी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि दारुल मुत्तकीन, लोगों के लिए नेमा दारुल मुत्तकीन, कि मुत्तकीन का घर बड़ा ही खूबसूरत है और वो जन्नत है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं दारुल करार, इन्नल आखिरत हिया दारुल करार, कि बहुत ही ऐसी जगह है जहां लोगों लोग करार लेंगे। सूरत मोमिन की आयत है। इसी तरह जन्नत का एक नाम मकाम अमीन है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन अल मुत्तकीन फी मकाम इन अमीन, अमन की जगह में होंगे। दारुल आखिरा भी इसको कहा जाता है। वला दारुल आखिराती खैरुल्लज़ीन तक़ौ अफला ताकिलून, आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। फिर अल्लाह ताला इसको जन्नत नईम भी कहता है, नईम नेमतों वाली जन्नत। जन्नत अदन भी कहता है कि ये ऐसी जन्नत होगी जो सदा बहार होगी। तो यहां पर भी कहा कि उनको जन्नतें मिलेंगी, बागात मिलेंगे। और यहाँ पे बाग का बड़ा ही अट्रैक्टिव, बड़ा ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत अल्लाह ताला ने सीन पेश किया है। कहा है कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। अच्छा बाग कौन सा होता है? जो ऊंचाई पर हो, बुलंदी पर हो। जब बाग बुलंदी पर होता है तो सैलाब उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। दूसरी बात क्या है कि वो आफतों से महफूज रहता है। तीसरी बात क्या है कि ऊंचाई पर बाग हो और नीचे नहर बह रही हो तो बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। अब तो हम अपने घर भी ऊंचे बनाते हैं ना, ऊंचाई पर बनाते हैं क्योंकि खराब नहीं होते। जब बार बार पानी या सैलाब आता है तो घरों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर भी बताया कि ऊंचाई पर बाग होंगे, नीचे उनके नहरें बहती होंगी। और नहरों में से जब बाग के दिल फरेब मनाजिर नजर आते हो तो कितना हुसन जो है वो पैदा होता है। फिर कहा कि इन बागों में उनको मिलेगा क्या? कुल्लामा रुज़िकू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़ा, के इन बागों में उन्हें जो है जब कभी भी कोई फल जो है वो खाने को दिया जाएगा, जब वो बाग में बैठे होंगे, जन्नत में बैठे होंगे, तो उनको फल खाने को दिया जाएगा। कालू, वो कहेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे कि ये ऐसे ही फल तो इससे पहले भी हमें दिए जाते थे। वो उतू बिही मुतशाबिहा, यानी वो मिलते जुलते होंगे, यानी वह तू भी मुतशाबिहा के ऐसे ही थे, मिलते जुलते थे। लेकिन इसके लिए हमें क्या बात पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि वो सेम होंगे, बल्कि शक्ल में मिलेंगे लेकिन जायके में नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला जैसे ये अनार हैं, अंगूर हैं, खजूरें हैं, है ना, बहुत से फलों का अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। वो इसलिए करते हैं, ऐसी मिसालें इसलिए देते हैं कि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एग्जैक्ट होंगे, यानी देखने में शक्ल में महसूस होंगे, लेकिन जब लोग खाएंगे तो उनको महसूस होगा कि ये सिर्फ यानी शक्ल के लिहाज से मिलती हैं, लेकिन वैसे उससे कई दर्जे आला और अफजल हैं, नाम एक जैसे हैं। जैसे हमें पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कोई भी चीज दुनिया की चीजों से नहीं मिलती सवाए नामों के। लैसा फिल जन्नति शैउन यशब्बहु मा फिद दुनिया इल्लल अस्मा, कोई चीज भी जन्नत की दुनिया से जो है वो नहीं मिलती। तो यहां पर भी ऐसा ही जो है वो होगा, यानी फल जो हैं वो इतने बेहतरीन होंगे, इतने अच्छे होंगे कि जब जन्नती उनको खाएंगे तो पहचान लेंगे कि ये आम है, ये अनार है, और ये जो है वो खजूर है। लेकिन वो दुनिया के फलों से उनका टेस्ट में कोई भी आपस में जो है ना रिजेम्बलेंस नहीं होगी, मिलेंगे नहीं। फिर फरमाया वो कहेंगे कि वाह, हमें ऐसे ही फल जो थे वो दुनिया में हमको दिए जाते थे। अच्छा, जब जन्नत की नेमतों का जिक्र होता है तो वहां उन नेमतों में एक बड़ी नेमत का जिक्र किया जाता है, और मुझे ये नेमत बड़ी ही खूबसूरत लगती है। और ये नेमत इतनी अच्छी है कि जिस घर में ये दुनिया में ये नेमत मौजूद हो तो दुनिया में भी उसका घर जन्नत है। और वो क्या है? वला हुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उनके लिए वहां पाकीजा पाक बीवियां होंगी। इतना भी काफी था कि अजवाज कह दिया जाता, लेकिन औरत की सिफात में से, मर्द की सिफात में से, जौज ऑपोजिट दोनों एक दूसरे के लिए है ना, इनमें सबसे बेस्ट चीज जो है वो क्या है कि प्योरिटी है, तस्किया है, नेकी है। आंखें खूबसूरत झील जैसी भी हो तो कब तक इंसान उसमें डूबा रहेगा? हकीकत पसंद तो होगा ना, हुस्न एक ही एक दिन के लिए होता है, सीरत सारी जिंदगी होती है। बहुत सी औरतों को ये कहते सुना, अगर पहले पता होता कि ये है तो बड़ी खूबसूरत पर जबान इतनी लंबी, तो फिर मैं तो कभी अपने बेटे की से शादी ना करती, है ना। तो हम ऐसी बातें, ऐसे मुहावरे कहते ही हैं। और मैं तो इस बात पे सोच रही थी कि अल्लाह, तुझे प्योरिटी, तुझे पाकिजगी इतनी पसंद है, तुझे इतनी अच्छी लगती है कि तूने वहां भी औरतों की सिफत के तौर पर ये नहीं कहा, यहाँ क्या कहा कि पाक होंगी ना। तो इन सारी नियमतों में जो यहाँ पे अगर आप गौर करें, सारी नियमतें बहुत अच्छी, लेकिन पाकिजगी बहुत अहम बात है ना। और जिन घरों में पाकिजगी नहीं है, जिन घरों में तज़किया नहीं है, जिन जोड़ों में आपस में ये नेकी नहीं है, वो बाकी दुनिया में भी ऐसा लगता है कि उन घरों में सुकून नहीं है। फरमाया और वहां पे वो हमेशा रहेंगे, वहम फीहा खालिदून। दुनिया में बाज मियां बीवी आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या है कि वो ये धड़का लगा रहता है कि पता नहीं इकट्ठे रहेंगे कि नहीं, कब कोई मर ना जाए, है ना। तो वहां पे यह है कि वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पे आप कुरान का ये अंदाज है, जब वो जहन्नुम का जिक्र करता है तो जन्नत का भी जरूर करता है, जब वो डराता है तो शौक और मोहब्बत भी दिलाता है। हम अलग बात है कि हम में से कुछ लोग जब दर्स देते हैं या लेक्चर देते हैं तो डरा डरा के ही मार देते हैं, है ना। तो कुरान ना तवाजुन के साथ बात को करता है, जहां डराया वहां मोहब्बत और शौक भी दिलाई, जहां जहन्नुम और आग का जिक्र किया साथ ही कहा कि तुम अगर बच गए, अगर डर गए, अगर तकवा अख्तियार कर लिया तो मेरी जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ी ऊंचाई पर होगी, बड़ा सब्जा होगा, बड़े फल होंगे, और जिस घर में फ्रूट भी हो, सब्जा भी हो, डेकोरेशन भी हो, सारी नेमतें हो, लेकिन उसमें घर की मालकनी ना हो तो घर भी सूना सूना सा रहता है ना, घर बड़ा अधूरा सा लगता है। बच्चे भी बाहर से आते ही आवाज वालदा को देते हैं, शोहर भी घर में दाखिल होते हैं, बच्चों तुम्हारी माँ किधर है ना। और जब वो ऊपर से वो नेक हो तो फिर सोने पे सुहागा है जिसको ये मिल जाए। जालिका बिफ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, युति उमैशा, इसके लिए हम सबको स्ट्रगल करनी चाहिए। क्योंकि कितने ही ब्यूटी पार्लर में आप चले जाएं, सेलोन में चले जाएं, आंखें झील जैसी मोटी या नीली पीली नहीं हो सकती, लेंस लगाते हैं इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, बालों को कलर करते हैं मुख्तलिफ, बाल असल रंग से भी चले जाते हैं, इनको देख के इनकी चालें इख्तियार करना चाहते हैं तो वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो हमें अल्लाह ने जो भी ब्यूटी दी है हर शख्स उसी में खूबसूरत है, लेकिन ये जो पाकी है और नेक बनना, इसके लिए कोशिश करेंगे तो ये जितनी जितनी करते जाएंगे उतनी उतनी मिलती जाएगी, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, क्योंकि अल्लाह ताला समझाने के लिए वक्तन फक्तन जो थे ना कुरान में मुख्तलिफ मिसालें देते थे, पहले मक्का और जो मुशरिक है वो समझ जाए, क्योंकि वो शिर्क करते थे। तो अल्लाह ताला कहते थे कि जैसे ये बुत है जिनसे तुम मांगते हो, अगर इन इनके पास से कोई मक्खी आए और इनसे कुछ छीन ले, इनके आगे जो तुम खाने की चीजें रखते हो, ये बुत मक्खी उसको को हटा नहीं सकते, मक्खी इन पर बैठ जाए उसको भी हटा नहीं सकते, तो तुम्हारी जरूरतें कैसी पूरी करेंगे। कभी मक्खी की, कभी अंकबूत यानी मकड़ी की मिसाल दी। तो मुखालफीन को ये इतराज था कि ये कैसा कलाम है कि ऐसी हकीर चीजों की अल्लाह ताला मिसाल देता है इसमें। तो यहां पर भी ये बात है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ला यस्तहजी, वो शर्माता नहीं है इस बात से, अय्यद्रिबा मसलम्मा बाउदतन फमा फौकहा, कि वो मच्छर या इससे भी हकीर कर किसी चीज की मिसाल पेश करे, ठीक है। यानी समझाने के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ मिसालें जो है वो पेश करता है, तो तुम लोग इस बात पर जो है वो एतराज न किया करो, इसको बुरा न माना करो। और अहले मक्का क्या करते थे, उनको बहुत इस बात पर गुस्सा आता था, वो इस बात पर इतराज करते थे कि अगर अल्लाह का कलाम है तो फिर अल्लाह ताला इसमें ऐसी मिसालें जो है वो क्यों पेश करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असल कद्रो कीमत जो है वो किसकी है, मिसाल की है, कि जो तुम्हें समझाने के लिए दी जा रही है, ना ना ये कि वो क्या चीज है जिसकी मिसाल दी गई, असल चीज वो रियलिटी है जो तुम्हें सिखाई जाना चाहता है, अल्लाह ताला सिखाना चाहता है। कहा कि अल्लाह हरगिज इस चीज से नहीं शर्माता कि मच्छर की मिसाल दे या इससे भी किसी कम चीज की, जैसे मच्छर के ऊपर कोई चीज होगी, मच्छर से छोटी और लाइट ही होगी तो उसके ऊपर होगी ना, फमा फौकहा, यानी जो उसके ऊपर है, यानी मच्छर का पर कह ले, उसकी कोई टांग कह ले, अल्लाह उसकी मिसाल दे सकता है, या फिर इसका ये मतलब है कि उससे भी हकीर, मच्छर से भी हकीर। फिर फरमाया फामल्लज़ीना आमनू, पस रहे वो लोग जो ईमान लाते हैं, फयालमून अन्नल हक्कु मिन रब्बिहिम, वो समझ जाते हैं कि ये हक है और हमारे रब की तरफ से है। वो क्या करते हैं, वो यही मिसालें उनके ईमान को बढ़ा देती हैं, वो बात को समझ जाते हैं कि शिर्क नहीं करना। वह अमल्लज़ीना कफरू, रहे वो लोग जो इनकार करते हैं, फयकूलूना, तो वो कहते हैं माजा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह का क्या इरादा है, अल्लाह क्या चाहता है जो ऐसी मिसाल देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरं व यहदी बिही कसीरा, इसी तरह एक ही बात से अल्लाह बहुत लोगों को क्या करता है, गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त जो है वो दिखा देता है। तो जो लोग तो समझना नहीं चाहते, वो फजूल नुक्ताचीनी करके, फजूल एतराजात करके, नाफरमानियों में और गफलत में दूर चले जाते हैं, گمراہیوں میں دور تک چلے جاتے ہیں، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں، جن جو حقیقت کے طالب ہیں، جن کے اندر صحیح بصیرت موجود ہوتی ہے، جن کو ان باتوں میں حکمت کے موتی نظر آتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں اور حکیمانہ ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقين، اور وہ گمراہی میں انہی لوگوں کو ڈالتا ہے جو کہ فاسق ہیں. فاسق کون؟ اللہ کی اطاعت کی حد سے نکلنے والے، جو اوبیڈینس کی باؤنڈریز ہیں اس کو اس سے نکل جانے والے. فرمایا اچھا فاسق، ابھی تک ہم نے مومنین اور کافر اور منافق ان کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ اپنا فاسقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فاسق لوگ بھی ہوتے ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ نکلنے والے، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کی حد سے نکل جانے والے، اللہ کو ماننے والے اور ماننے کے بعد پھر اللہ کا انکار کرنے والے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی تعریف بتائی ہے، آیت نمبر 27 میں فاسق کی مکمل تعریف بتائی. پہلی چیز کیا ہے؟ الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، تو اللہ کی بندگی میں اللہ کا تمام آرڈر اور تمام قانون آتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، یعنی وہ توحید کا انکار کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، تو یہ انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین ابراہیمی پر پیدا ہوتا ہے نا، اس کے گھر والے ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا عیسائی جو ہے وہ مجوسی بنا لیتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ توحید کا انکار کرتا ہے، فاسق، اللہ سے وعدہ کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے، کہتا ہے تیری بندگی کروں گا، لیکن جب بندگی کا وقت آتا ہے تو پھر اس کا انکار کرتا ہے. اللہ جو آرڈر دیتا ہے قرآن مجید میں، وہ آرڈرز کو فالو نہیں کرتا. دوسری بات کیا ہے؟ فَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، فاسق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ کاٹ دیتے ہیں. تو یہاں پر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، تو ان رشتوں کو وہ لوگ کاٹ دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا، جیسے ایک سٹیچو کی شکل میں رحم کھڑا ہو گیا، اور پروردگار کی کمر تھام لی. اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، قرابت کا خیال نہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا؟ رحم کہنے لگا کہ میں پروردگار میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورت محمد کی یہ آیت پڑھ لو، سورت محمد آیت نمبر 22، فَحَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد بھرپا کرو گے اور ناتے رشتے کاٹ ڈالو گے. بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تمام رشتے داریاں جو ہیں نا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جوڑو، وہ لوگ اس کو کاٹتے چلے جاتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بھی آج قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں نا، کہ رشتے داریاں جو ہیں نا وہ آپس میں قائم نہیں ہیں، لوگ بولتے نہیں ہیں، ناراض ہیں، ایک دوسرے کے مرنے اور جینے میں شرکت نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صلہ رحمی، اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے اور اس کو لمبی عمر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب انسان، قیامت ہوگی اور پھر آخرت، اور جب پل صراط سے گزرے گا، دو چیزیں اس کا دامن پکڑ لیں گی، ایک اس میں سے قطع رحمی، پل صراط سے اس کو گزرنے نہیں دیں گی. تو یہ پیٹ کے رشتے جو ہیں نا، ماں باپ ہیں، اور اسی طرح ننہال باپ ہے تو ددھیال، اور جو بھی اس طرح کے قریبی رشتے ہیں، کتنی ہی ناراضگیاں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مزاجوں کا اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن نہ کٹنا نہیں چاہیے. اسی طرح ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ان لی قرابتن, کہ میرے لیے میرے رشتہ دار ہیں, اصلہم میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں, فیقطعونی اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں, وَأُوسِنُ عَلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيَّ, میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں, وَأَعْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ, میں ان کے ساتھ حلم سے اچھے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں, فَقَالَ لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَأُ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تو گویا تو ان کے چہروں پر سیاہی مل رہا ہے, وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلَيْهِمْ, اور اللہ ان کے مقابلے میں ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا, مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ, جب تک تو اپنی اس حالت پر قائم رہے. میں اور آپ بھی تو یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو اچھا سلوک کرتے ہیں, یہ اچھا سلوک نہیں کرتے, تو پھر آخر ہم کب تک اچھا سلوک کریں نا, تو ہم تو بلاتے ہیں وہ بلاتے ہی نہیں, وہ ہمارے مرنے جینے پر آتے ہی نہیں, تو ہم کیا کریں. اسی طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی, کہا کہ وہ شخص جو بدلے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ مکمل درجے کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے, ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ, کمال درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس کے ساتھ بے تعلقی کرے تو یہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور ان کا حق ان کو دے. تو آپ دیکھ لیں کہ صلہ رحمی جو ہے یہ کتنی ضروری ہے, اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑیں, ٹھیک ہے نا, اور جو ہمارے حقوق نہ ادا کریں ہم ان کے حقوق ادا کریں, جو ہنس کر ملتا ہے اس سے ہنس کر ملنا, جو تحفہ دے اس کو تحفہ دینا, جو دعوت پہ بلا لے اس کو دعوت پہ بلا لینا, اور یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو ساری دنیا کرتی ہے, لیکن جو ایسا نہ کرے پھر اس کے ساتھ کرنا, تو اس سے کیا ہے کہ جنت ملے گی, اور جو ایسا نہیں کرتا کہا کہ وہ فاسق فسق اس کے اندر پایا جاتا ہے. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, تیسری اس کی صفت کیا ہے, فاسقی, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. یہاں پہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ سمجھنے والا ہے کہ زمین میں فساد جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے. زمین اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو جائے, اور وہ لوگ جو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے تو نتیجہ تن کیا ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے تو توحید اختیار نہیں کرتے, ہے نا, شرک. تو جب لوگ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر, دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے, فساد ہی فساد ہے, اور نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بندگی کا انکار کر کے دنیا میں فساد بنانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر دوسری طرف کیا ہے کہ جب لوگ رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے, حقوق العباد ادا نہیں کرتے, تو بھی سوسائٹی کے اندر کیا ہے کہ فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں, اور دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر قائم ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جو عائد ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے. اور اگر ہم یہ حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کرتے, یعنی اللہ کا حق حقوق اللہ اور اس کے ساتھ بندوں کا حق جو بندے کا بندے پر ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوگا. تو اس وقت دنیا کے حالات جو خراب ہیں, جو مسئلے مسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کا قانون اپنے اوپر نافذ نہیں کیا, اور اس کی دوسری بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم حقوق العباد ادا نہیں کرتے. گھروں میں ماں باپ کی موجودگی, بزرگوں کا ہونا یہ رحمت ہے, یہ برکت ہے, اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہیں ان کی ہم خدمت کریں گے, اگر وہ بیمار ہیں, اگر وہ بوڑھے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جو ہے وہ ہم پر نازل ہوگی, ہے نا. تو اور بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دیکھنے کی بجائے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس چیز کو رواج دینا چاہیے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ دوست دوست سے زیادہ تعلقات ہیں, لیکن رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ نہیں ہیں. تو یہاں پہ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا, اولئک هم الخاسرون, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. پہلے ہمیں شروع میں کیا بتایا تھا, اولئک هم المفلحون, کہ یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا. پھر مثال جو دو تھی منافقوں کی, اور وہ جو صبح ایمان لاتے ہیں شام کو انکار کر دیتے ہیں نا, اور کہتے ہیں کہ ہم کیا بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. پھر دوسری مثال اس کی تھی کافر, منافق, پھر فاسق کی مثال. تو یہ تینوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الخاسرون, صرف فاسق خسارے والے نہیں ہیں, منافق بھی اور کافر بھی. تو پہلے بات, یعنی دو ہی باتیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں. پہلی بات کیا تھی, اولئک هم المفلحون, اور دوسری بات ساری آیتوں میں جو پڑھی وہ کیا تھی, اولئک هم الخاسرون. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ سے کفر کرتے ہو, بھلا کیوں کر اللہ کی ناشکری کرتے ہو, ایسے کیسے ممکن ہو گیا کہ تم اللہ کے احسانات کو بھلا دیتے ہو. کیف تکفرون باللہ, کیا انسان اے حقیر سے نطفے کی بوند سے پیدا ہونے والے انسان, اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا, اتنی نعمتوں سے نوازا, سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اللہ کا انکار کرتا ہے, تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تیرے اندر یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی, تیرے اندر یہ ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے, تیری یہ جرت کیسے ہوئی. کیف تکفرون باللہ, کیف, کیوں کر, کس طرح, کیسے. ہاں, تو اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ کیونکہ پچھلی آیتوں میں اللہ کے وجود, توحید, رسالت کے دلائل, منکرین اور مخالفین کے جو بھی غلط خیالات تھے اللہ نے ان کو رد بھی کیا, اور دو آیتوں میں خاص طور پہ اللہ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کیا. وہ دو آیتیں کون سی تھی, آیت نمبر 21-22. ان انعامات کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان پر تعجب کرتا ہے, حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جرت ہو کیسے گئی پیدا, ایسا کیوں کر ممکن ہوا. اب سوچیں, والدین اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا, اب ذرا تصور میں لائیں کہ کم چیز ہو تو خود بھوکے رہتے ہیں, بستر گیلا ہو تو ان کو خشک بستر پہ رکھ کے, اور رات کو بھی اٹھنا پڑے تو بار بار اٹھ کر ان کو دیکھتے ہیں. پھر یعنی ان کے جیکٹ, ان کے کپڑے, ان کا کھانا, ان کی سنیک, ان کے جوسز, ان کی رائڈ, سب کا انتظام کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب اپنے وہ بوڑھے والدین کی خدمت کرے نا, ان کو دیکھے. کیونکہ جب بچے ماں باپ کی گود میں دیے جاتے ہیں تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتے ہیں, اور وہ گوشت کے لوتھڑے کو پال پوس کے اللہ کی توفیق سے, یعنی ان کی تربیت, پرورش, نگہداشت کے مراحل سے ان کو گزارتے ہوئے پھر کیسا وہ جیتا جاگتا, چلتا پھرتا, ایک خوبصورت جب وہ انسان بن جاتے ہیں, ایک خوبصورت جو ہے وہ کام کرنے والا انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس وقت تک والدین ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں. گوشت کے لوتھڑے کی والدین نے کیسے خدمت کی اور کیسے پرورش کی, اب ہڈیوں کے ڈھانچے کی اب کیسے خدمت ہونی ہے. اور آپ سوچیں کہ والدین جب بچے کی تربیت کرتے ہیں نا, تو دعائیں کر کر کے کہ یا اللہ تو اس کو صحت دینا, اس کو لائق کرنا, اس کو بڑا کرنا, اس کو خوشیاں دینا, اور ان کی زندگی کی امیدیں اور دعائیں کر کر کے. اور جب بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ فوت ہوں گے, کب ان بڑھاپے سے ہمیں فرصت ملے گی, یا ہماری پارٹیاں, ہمارے کام, ہماری مصروفیت, ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے. بوڑھے والدین ہر, یعنی وہ ہر بیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی دنیا کے سارے بیٹے, لیکن اب اس وقت سوسائٹی کے اندر ایسے حالات نظر آتے ہیں کہ بڑھاپے میں دھکے ملتے ہیں, کوئی یعنی کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ خوشی سے انتظار سے ان کو گھر رکھا جائے, مجبوری, اور مجبوری بھی ایسی کہ جس میں وہ پیار نہیں, وہ شفقت نہیں, وہ دعائیں نہیں, وہ ماں باپ کے چہرے کی جو چمک تھی وہ نہیں. کہاں ہمارے پاس اتنا وقت ہے. تو آپ سوچیں کہ پھر اس وقت والدین بار بار ان کی زبان پر یہ چیز آتی ہے, ان کے ہونٹوں تک آتی ہے, ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے بچے ایسے کیسے ہو گئے نا, मैंने तो इनको, माँ कहती है दूध पिलाया था, बाप कहता है कि मैंने चार चार जॉबें की, मैंने तीन तीन जॉबें की, मैंने ना दिन देखा ना रात, मेहनत मजदूरी की, खून पसीने की कमाई इनको लाके खिलाई, और अब ये मेरे बच्चे नमक हराम कैसे हो गए ना, अब इनको ओल्ड हाउसेस में डालने की तौफीक कैसे हो रही है, ये पूछते क्यों नहीं है ना, मैं सोच नहीं सकता कि ये मुझे फोन ना करें या पूछे ना, या मेरी खिदमत के लिए इनके पास जो है ना वक्त ना हो, या ये कि जैसे बच्चे मुंह ही मोड़ ले, बच्चे मुंह ही मोड़ ले, है ना, तो इंसान सोचता है कई किस तरह, तो दुनिया में सबसे बढ़कर इंसानों पर जो हक है इंसानों में से वो वालदैन का है, वालदैन के बाद सबसे बड़ा हक अगर किसी इंसान पर है तो रब का है, तो अल्लाह ताला ने ऊपर जो है अपने हक का भी जिक्र किया, अहद अल्लाह बंदगी का अहद, आलमे अरवाह का अहद, उसको मिसाक कहा, जो मजबूत है, एक एग्रीमेंट था जो लिया गया था, और फिर हमने कलमा तैयबा पढ़ा तो फिर ये और मजबूत हो गया है ना, और उसके बाद हम वो पूरा नहीं करते तो हकूक अल्लाह के साथ साथ फिर हकूक उल इबाद पूरा नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप एक सर्कल है कि पहले जब दो मियां बीवी आपस में मिलते हैं तो उनके हकूक, फिर औलाद होती है तो उनके, फिर वो वालदैन बन जाते हैं तो उनके, फिर इसी तरह पड़ोसी, फिर रिश्तेदार, फिर सर्कल पे सर्कल, एक जंजीर है जो चलती चली जाती है ताल्लुकात की ना, तो यहां पर यही बात की अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना अल्लाह के हकूक अदा करते हैं और ना ही बंदों के हकूक अदा करते हैं, और मेरी जमीन पर जो मैंने इंसान के लिए बनाई, नेमते जो इंसान के लिए बनाई, फिर उसमें इतना बिगाड़ आ जाता है, फिर अल्लाह ताला सवाल करते हैं, अल्लाह पूछते हैं कैफा तकफुरून बिल्ला, क्या इंसान तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, भला क्यों कर न शुक्री करते हो, तुम कैसे अल्लाह के एहसानात को भूल जाते हो कि तुम जुल्म करो और तुम कुफर करो, और तुम इतनी भी जहमत गवारा नहीं करते, तुम इतनी भी तकलीफ नहीं करते कि अल्लाह की नेमतों को महसूस करो, अल्लाह के एहसानात जो है उनको, अल्लाह के एहसानात जो है उनको महसूस करो, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकात जो इर्द गिर्द सारी तुम पर मैंने की, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे, तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं होती कि चंद घड़ियां चंद लम्हे बैठ कर मुझे याद ही कर लिया करो, तो कैसे है इतने आदम तेरे अंदर इतनी जुर्रत पैदा होती है कि तू मेरे साथ कुफर करता है, कई फतक फुरू न बिल्ला, फिर फरमाया और तो बातें हैं ही थी, बल्कि फिर अल्लाह ने क्या किया, वकुन तुम अमवातन फअहयाकुम, तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था, तुम तो बेजान थे, तुम एक हकीर से पानी के नुतफे से पैदा करके फअहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दे दी, फिर तुम्हें हई दे दी, तो अब यहां पहले भी अल्लाह ने नेमतों का जिक्र किया था, अब फिर दोबारा इस नेमत का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि तू अपनी हकीकत पर गौर तो कर, तू अपने वजूद की इब्तदा पर गौर तो कर कि कैसी एक बहने वाली चीज से तुझे पैदा करके कहां से तुझमें जान डाली और तुझे एक जिंदा इंसान बनाकर खड़ा कर दिया, कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैफ तकफुरून बिल्लाही वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम मुर्दा थे, तुम मैयत थे, तुम बेजान थे, तुम्हें रूह डाली, तुम्हें जिंदगी अता की, थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैही तुरजऊन, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हारी जान निकाल लेगा, फिर तुम्हें वो जिंदगी देगा, फिर तुम्हें उसी की तरफ जो है वो लौट कर जाना होगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पहली मर्तबा जिस तरह बेजान जर्रात को जमा करके अल्लाह ने तुम में जान पैदा की, इस तुम्हारी जब उम्र का वक्त मुकर्रर हो जाएगा, जो तुम्हारी उम्र का मुकर्रर वक्त है जब वो खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारा दुनिया से कूच करने का वक्त जो है वो आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह फिर तुम्हें जो है वो मौत दे देगा, फिर तुम्हें जो है वो मैयत बना देगा, और फिर एक अरसे के बाद कयामत में इसी तरह तुम्हारे जिस्म के बेजान और मुंतशिर जर्रात को जमा करके वो तुम्हें जिंदगी देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा किया जाएगा, एक मौत और फिर बेजान होना, ये तो था ही कि तुम इब्तदा में थे, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें जिंदा किया और जिंदगी की जितनी मुद्दत है तुम पूरी कर लोगे, फिर तुम्हें मौत मिलेगी और फिर जिंदा किया जाएगा, और जब फिर जिंदा किया जाएगा, यहाँ पे दो मौत और दो जिंदगियों की बात हो रही है, पहली मौत वो जब इंसान कुछ भी नहीं था, पहली जिंदगी वो जो दुनिया की जिंदगी है, फिर इंसान जो है फिर मर जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब दोबारा उठाकर खड़ा किया जाएगा, जब कयामत होगी, जब इंसान कहेगा कि मुझे मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है ना, वो भागेगा, वो उठेगा, वो दौड़ेगा, और वो वक्त होगा तो कैसा वक्त होगा? अल्लाह ताला कहते हैं तुम इलैही तुरजाउन, फिर उसी की तरफ जो है तुम्हें पलटकर जाना है। तो इससे मुराद हशर नशर और कयामत का वक्त है। अब अल्लाह ताला ये जो कहा ना कि उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, इससे मुराद ये है कि तुम अपने दुनिया में जो मेरी नेमतें हैं उन पर गौर करो, मेरे एहसानात जो हैं इनका इन, इन इनको एहसास इनका एहसास करो, मेरी मेरे मैंने तुम पर जो इनामात और अकराम की बारिश की है उनको महसूस करो, महसूस करो। क्योंकि जब मेरे पास तुम आओगे, जब मेरी तरफ तुम रुजू करोगे, तो मैं तुमसे इन सारी चीजों के बारे में हिसाब किताब करूंगा। और किसी के पास जिंदगी ना हो तो वो नेमतों से फायदा उठा नहीं सकता, और किसी के पास हदायत ना हो तो जब वो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा तो वो कामयाब हो नहीं सकता। तो यहां पर जो बात है वो क्या है कि इस दुनिया से जाने का जो दरवाजा है वो मौत है ना। दुनिया की ये मौत का जो दरवाजा है, फिर क्या है कि उसके बाद एक ऐसी जिंदगी शुरू होने वाली है जिसका कोई एंड नहीं है। और फिर उसका दारोमदार किस पर है कि क्या किया, अगर कैफा तकफुरूना बिल्ला, अगर कुफर किया तो फिर नाकामी ही नाकामी है, नामुरादी ही नामुरादी है। और अगर ईमान लाने के बाद शुक्र किया, एहसासे बंदगी बजा लाए, फिर अल्लाह की अताअत की, अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह के लिए मरे, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के गुण गाते रहे, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के अहकामात को नाफिज करते रहे, तो फिर क्या है कि इलैही तुरजाउन, कि उसकी तरफ जब जाएंगे तो कोई डर नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अल्लाह से मुलाकात का इंतजार होता है। फिर इसके बाद जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वो वही तो है जिसने तुम्हारे लिए खलका, पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दि, जो कुछ भी जमीन में है। और आगे बड़ी ही खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने कही कि जमीआ, सब का सब। आप देखें, आप ग्रोसरी करके आती हैं, आपके बच्चे आपसे पूछते हैं कि मेरे लिए भी कुछ है, आप कहते हैं सब का सब तुम्हारे लिए है। आप उसका जूस भी देखती हैं, उसके स्नैक्स भी देखती हैं, उसका फ्रूट भी देखती हैं, खाने पीने सब चीजों में आप सोचती हैं कि बच्चे के लिए हम क्या लेके जाए ना। तो आप बच्चों को कहती हैं सब का सब तुम्हारे लिए है। आप कमरे की व्हाइट वॉश करते हैं तो बच्चों को क्या पसंद है, आप चीजें खरीदती हैं तो आप कहती हैं बच्चों को क्या पसंद है, ये खिलौने, ये सब के सब तुम्हारे। आप ईद का टेबल सजाती हैं तो आप कहती हैं मेरे बच्चों को ये और ये और ये पसंद है। आप खाना बनाती हैं तो आप सोचती हैं कि मेरे बच्चों को ये फूड जो है ना वो पसंद है ना। यानी बच्चे की पसंद आपके दिल और दिमाग के अंदर जज्ब हो गई है, पेवस्त हो गई है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वही अल्लाह तो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन में क्या, सब का सब, सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया, ये सूरज भी, ये चांद भी, ये सितारे भी, ये जगमग जगमग करते हुए सितारों से भरी हुई रात भी है ना, ये फूल, कभी आपने फूलों की नुमाइश देखी है, कभी आपने बहार के मौसम में फूलों की खुशबू सूंघी है, कभी आप बागों का आपने नजारे देखे हैं, मनाजिर देखे हैं, वो तो कितने हसी होते हैं। किसी शायर ने कहा कि जब मैं गुल को देखता हूं तो खालिके गुल की सोचता हूँ, गुल को देखते रहना तो कोई बात नहीं, जब मैं फूल को देखता हूं मुझे वो इतना अच्छा लगता है, मैं सोचता हूं कि ये इतना खूबसूरत है तो उसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा ना, है ना ये बात। तो अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया वो मेरे और आपके लिए बनाया, इसमें इंसान भी है, इसमें हैवान भी है, इसमें आसमान भी है, इसमें जमीन भी है, गिजा भी है, लिबास भी है, मकान भी है, दवा भी है, और राहत के और आसाइश के तमाम जितने भी सामान हैं वो सारे के सारे हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि दुनिया की जितनी चीजें हैं वो अल्लाह ने बनाई, और सब की सब किसके लिए बनाई, मेरे और आपके लिए बनाई है ना। मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया, आप सोचे तो सही, ये तो नहीं कहा किसी और के लिए बनाई, कहा तुम्हारे लिए बनाई। इससे पता चलता है कि मुझे और आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ी रिस्पेक्ट दी है, मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया है ना ये बात। तो जब अल्लाह ताला मुझसे और आपसे इतना प्यार करते हैं कि पूरी कायनात मेरे और आपके लिए सजा दी, डेकोरेट कर दी, तो फिर मुझे और आपको क्या करना चाहिए था, सारा कुछ मेरा और मुझे और आपको अपने आप को अल्लाह का कर देना चाहिए था। यानी सारी खुदाई तेरी, लेकिन ए इंसान तू मेरा बन जाना, तू मेरी अताअत करना, तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत बिठाना। अब सोचिए तो सही कि कोई आप बच्चे को कहती हैं खिलौने भी तेरे, ये सारे खाने भी तेरे, ये कमरा भी तेरा और ये सारा कुछ तेरा, लेकिन ऐ बेटा तूने मेरी अताात करनी है, मेरा कहना मानना है। बच्चा सब चीजें आपसे लेकर के है कि नहीं मैं हमसाई का कहना मानूंगा जो नेबर में रहती है, वो मैं फलां जो आंटी है वो जो सही लिबास भी नहीं पहनती या यहाँ मतलब मुझे वो कोई अच्छी लगती है, तो आप बर्दाश्त करती हैं। आप बच्चे को छोड़ने जाती हैं, बच्चा किसी दूसरे के साथ चलने लगता है, आप कहती है जा मैं साथ रही हूँ, चल तू दूसरे के साथ रह, मैं तुझे स्नो के मौसम में बस तक छोड़ने जा रही हूँ और तूने मेरे साथ चलना नहीं तो फिर मुझे आने की जरूरत भी नहीं है ना। आप इतनी भी उसकी गैरियत बर्दाश्त नहीं करती बच्चे की कि इतनी भी आपको तवज्जो ना दे, तो आपके साथ ना चले, वो आपको देखे ना, आप हाथ हिलाएं तो बस में से वो आपके हाथ हिलते का जवाब ना दे, है ना। तो ये क्या है, ये मोहब्बत के रिश्ते हैं ना सारे। तो अब नतीजे में आप क्या चाहती हैं कि बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे, बच्चा आपका एहतराम करे, बच्चा आपकी अताात करे। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं सारी दुनिया तेरी लेकिन ये इंसान तू मेरा। ये एक मोटी सी बात है, ये एक छोटी सी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एक बड़ी मुख्तसिर सी बात है। लेकिन इब्ने आदम सारी मुख्तसिर होने के बावजूद भी इस बात को याद ना रख सका। कभी वो नफ्स का बंदा बनता है, कभी वो शैतान का बनता है, कभी वो इबलीस का बनता है, कभी वो जमाने का बनता है, कभी वो मगरिब को खुश करना चाहता है, कभी वो मशरिक, यानी रहते यहाँ है तो थोड़े दिनों में डिजाइन पाकिस्तान से आ जाता है, कहते अब क्या करें डिजाइन वहां पे ये चल पड़ा है। भले से वहां कोई भी डिजाइन चले, अल्लाह की अताअत का डिजाइन हमारे ऊपर रहना चाहिए हर हाल में, बाकी सारे स्कैंडल पूरे हो जाते हैं, फिर कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। तो ये है बात, किस पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन में सबका सब, लेकिन तुम मेरे बन जाओ। जो पीछे सारी बंदगी की बात हुई, फिर कहा सुम्मा स्तवा इला समाई, फिर वो मतवज्जो हुआ आसमान की तरफ, फसव्वहुन्ना सब असमावात, फिर उसने दुरुस्त किए, फिर उसने ठीक से बनाए सात आसमान। तो इस्तवा इला, वैसे तो सीन मौ या का मतलब हमने पढ़ा था ना कि किसी चीज को ठीक करके रखना, किसी चीज को जो है वो मुनासिब करना, उसको बराबर करना, उसको हमवार करना, उसको एतदाल और तवाजुन देना। तो इससे हमें एक बात तो ये पता चलती है कि पहले जमीन बनाई गई फिर आसमान बनाया गया, है ना। अल्लाह ताला ने पहले जमीन का जिक्र किया है, फिर कहा कि मैंने आसमान बनाए, और कितने सात, गोया के जितने भी आसमान हैं सात आसमान हैं, तो सातों आसमानों के अंदर जो भी निजाम है अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उसको बड़ा ही दुरुस्त अंदाज में रखा है, मैंने उसको बड़ा ही एतदाल दिया है, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से बनाया है। तो अब इनकी मजीद सातों आसमानों की हकीकत क्या है, हु नोस, कौन जानता है। वहु अभी कुल्ली शई इन अलीम, वही जो हर चीज का इल्म रखने वाला है, उसी को ज्यादा पता है, वही सही बात को जानता है कि उसने ही इन सब चीजों को जो है वो पैदा किया, और कैसे पैदा किया, उनकी क्या हकीकत है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जो है वो जानता है। तो बहरहाल हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह ने जमीन भी बनाई, आसमान भी बनाए, और उस ये सब कुछ जो है वो मेरे और आपके लिए बनाया, और मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप जो है वो अल्लाह अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की बंदगी करें, और अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून को जो है वो नाफिज करें। और 29 यानी सूरत अल बकरा आयत नंबर 1 से लेकर 29 तक, यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें ये दावत दी है पूरे के पूरे उसमें कि बंदगी रब करो। अगर पूरी इन आयात का हम निचोड़ भी देखना चाहें तो एक खास बात जो कही गई वो क्या है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मैं और आप अल्लाह की बंदगी करें, और अगर हम बंदगी का इनकार करते हैं ना तो अल्लाह मेरी और आपकी हरकतों से वाकिफ है, अल्लाह से मेरी और आपकी कोई हरकत छुपी नहीं रह सकती। क्यों, वहु अभी कुल्ली शई इन अलीम, वो तो हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप अपने ऊपर होने वाली नेमतों पर गौर करें और फिर सजदा शुक्र बजा लाए। मेरा ही ना सबूर दिल शुक्र बजा न ला सका, उसकी अतातों में तो कमी हुई ही नहीं। ना सबूर ना शुक्रा दिल, कि मेरा दिल ही शुक्र अदा नहीं करता, पर अल्लाह ने तो बहुत मुझे जो है वो नवाजा है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।
بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم